दामोदर अष्टम हम लोग दामोदर अष्टक के प्रथम श्लोक में नमामि ईश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत् कुंडलं गोकुले विराजमान यशोदा फलार्थावमान परामृष्टमप्यं ततोदित्तोऽयम्। सनातन गोस्वामी की इस श्लोक की व्याख्या हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पहले तो उनका तत्व सच्चिदानंद के द्वारा बताया, इसके बाद में उनकी रूप माधुरी, किंतु उनकी रूप माधुरी यदि सनक सनंदन सनातन हो और उनकी परिषद में उनके मंडली में यदि कृष्ण हो तो कैसे सुशोभित होंगे, वो सभी लोग उनको ब्रह्म के रूप में दर्शन करेंगे, देखेंगे कृष्ण के रूप में ही, ये तो परब्रह्म है। यदि यही कृष्ण हनुमान जी इत्यादि के परिकर में हो तो ये राम ही है, कृष्ण का रूप धारण किया है। यदि यही कृष्ण यशोदा जी की गोदी में हो तो कैसे दिखेंगे, यशोदा जी के बिल्कुल सखाओं के बीच में क्रीड़ा कर रहे हो तो दिखेंगे ये हम लोगों के सखा, किंतु गोपियों के मंडली में यदि हो तो परिकर वैशिष्ट के कारण उनका सौंदर्य सबसे अधिक हो, इसीलिए एक श्लोक दे रहे हैं। और ये भी यशोदा जी का जो वात्सल्य है और उस समय कृष्ण का जो रूप निखरेगा वो गोकुल में ही, अर्थात जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो नंदगांव, और राधा कुंड में या राशस्थली में गोपियों के साथ में उनका रूप सबसे मनमत हो जाएगा। इसलिए एक उदाहरण दे रहे हैं श्रीमद् भागवत से सनातन गोस्वामी जी, परिवार के बीच में कृष्ण का परिवार कैसा है उसके लिए दे रहे हैं, चकास गोपी परिषद गतो अर्चित त्रैलोक्य लक्ष्मी कृपदम बपूर्तर तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरो योगेश्वरान अंतर हृदि क्या है, अंतर हृदि भागवत कृष्ण बंशी वादन के द्वारा समस्त गोपियों को बुलाया, तिनी आनयन कर लेंगे समस्त गोपी बन के, कोटि कोटि गोपियों खाने उपस्थित हुए, कृष्ण पूर्वता के आग्रह कर लेंगे तुम्हारा बाड़ी फिरे जाओ, लोग घर में लौट जाओ। किंतु गोपियों ने जो उत्तर दिया उसका हमने कल वर्णन किया था। जो गोपियों ने कहा जैसे आप तो बड़े जगत गुरु हैं, तो पहले हम आपकी पूजा कर लें, इसके बाद में तब फिर हम पतियों की सेवा करेंगे। इन सब तर्कों के में कृष्ण उत्तर नहीं दे सके, अंत में उनके साथ में राज इत्यादि किया। उस समय में कृष्ण और सब गोपियों का सौभगमत और श्रीमती राधिका का मान मत मान प्रसन्न करने के लिए राज से सब गोपियों को के साथ में नृत्य कर रहे हैं कृष्ण। समस्त गोपी गणेर संगे नृत्य कर कृष्ण, ताते सब गोपीरा मने कर आमार संगे नृत्य कर हमारी हाथे मध्य हाथ दिए आमार संगे हाथ तुले कि आमा के धरे कि आमार पाये धरे नृत्य कर सब। ताते मत हलो जे आमार मतन सौभाग्यवती आर केउ नाई, आमी सब थेके जे कृष्ण सब लोग है श्रीमती राधिका के प्रत्याग करे चंद्रावली एवं ललिता विशाखा सकल के प्रत्याग कर दिए केवल मात्र हमार संगे नित्य हो ताते सब मौत हो गए। आज श्रीमती राधिका की हलो उन्हें देख लेंगे हमारे संगे नित्य कर छे, अब आर अन्य देख देखे जो ओदे संगे नित्य कर छे ओ ओरा आर आमी की सम एक बराबर। कृष्ण माँ के बार बार बोले जो तुम ही हमार सर्वाधिक प्रिया और सफल ही यही रकम मन करे और एक हम देखी जैसे हमी हमार दिखे तक हमार संगे आबार अन्य संगे नृत्य कर तार तखन मान बोलो मद बोलो ना सज्जन ने कृष्ण की कर ले अंत ध्यान रास्ते के फिर देखे जा तो रास हो गए ना श्रीमती राधिका के प्रथम हो गए धारण करते थे, कुछ मुस्कुराते हुए कुछ लज्जित होते हुए सिर नीचा कुछ करते हुए गले में जैसे माला माने ऐसे क्षमा मांगने के लिए प्रकार से क्या करते हैं उसको गलवस्त्र करके उनके सामने गोपियों ने गोपियां तरह तरह के गण हैं, ललिता जी के गण हैं, विशाखा जी के गण हैं, चंद्रावली जी के गण हैं, भद्रा जी के हैं, श्यामला जी के हैं, बहुत से गण हैं। एक एक गण की हजारों हजारों गोपियां ने अपने अपने उत्तरीय वसन जिसमें कुमकुम लगा हुआ आसन बनाया और वो लोग देख रहे हैं कि हमारे बनाए हुए आसन पर ही कृष्ण बैठे हुए और सब आसन पर ये तो आश्चर्यमय लीला हुई किंतु माधुर्य के द्वारा घटी हुई। सब लोगों ने देखा जो वही हमारे प्रियतम कृष्ण उस पर बैठे हुए। उसी समय में किसी ने कृष्ण चंद्र जी के पैर अपनी गोदी में लेकर के सहलाने लगी, कोई कृष्ण का दाहिना हाथ अपने हाथों में लगे बड़े प्रेम से सहलाने लगे, कोई अपने हाथ से कृष्ण का तांबूल अपने हाथों से लेकर के और अपने चबाने लगी और कोई बहुत दूर खड़ी होकर के तिरछे नजरों से बाणों के द्वारा उनको विद्ध करते रहे कुछ क्रोधित होकर के। इसमें जो अपने हाथों में हाथ लेकर के बड़े प्रेम के साथ में सहला रही है और उड़ रही है कुछ कुछ ये है कौन चंद्रावली, जो हाथों में हाथ लेकर के दूसरी तरफ से पान लेकर के चंबा रही है वो है पद्मा जी और एक उनके चरणों को अपने हाथों में लेकर के सहला रही है वो है श्यामला जी। श्यामला जी मैंने वो है और दाता का पक्ष की एक है भद्रा जी, वो कुछ प्रार्थना करते हैं उनके दूसरे चरण के ऊपर, और जो दूर से खड़ी है वो क्या कर रही है, कृष्ण के ऊपर में कुछ नाराज हो रही है, कुछ मान के साथ में खड़ी होकर के कृष्ण को अपने बाणों से बीत रही है। मानो तुम ऐसे हो अकृतज्ञ, हम लोगों को छोड़ करके चले गए, ऐसे तुमसे हमारा क्या प्रयोजन। ये श्रीमती राधिका जी उनके पास में खड़ी ललिता इत्यादि जी का ये सब वर्णन किया। उस समय उनकी शोभा कैसे हुई, कुछ लजा रहे हैं, कुछ मुस्कुरा भी रहे हैं, उस समय उनका वरूप मनमत के भी मनमत को के समान। ये गोपियों के समूह में ही ऐसा हो सकता है, सखाओं की मंडली में, यशोदा जी की गोदी में, या और कहीं भी ये संभव नहीं। और ये होगा कहां, ये गोकुल में भी नहीं होगा, ये होगा वृंदावन में, और विशेष करके होगा गोवर्धन की तराई में, जहां पर कि वो चंद्र सरोवर अथवा राधा कुंड में यदि रास होगा तो यहाँ पर यह संभव। इसलिए दो रास बतलाए गए, एक शारदीय रास और दूसरा बासंती रास। ये तो अभी वर्णन किया गया है, ये शारदीय का, ये शारदीय किसी के प्रसंग में श्रीमद् भागवत में शारदीय रास का वर्णन है, वो जगदेव जी के ग्रंथ में उन्होंने वर्णन किया है बासंती रास का। ठीक है,
विष्णु आगे
ना
आगे
ना शारदीय श्रीमती राधिका ही मान कर चले गए, कृष्ण पर तार संगे देखा, कृष्ण खोजते खोजते जाते रात छड़वा दरकार की शतपति गोपी फलते नारी कृष्ण का मन हरण नहीं कर सकी, क्योंकि राधिका जी चली गई हैं और कृष्ण को देखा जाए राधा जी तो है नहीं, तो खोजने के लिए वो उनके पीछे पीछे छूटे। अब गोपियों का इस विषय का अनुसंधान है, वो कृष्ण ही को ही खोज रही और ललिता विशाखा दूसरे कह नहीं रही, देखिए हमारी सखी कहाँ गई और कृष्ण कहाँ गए, ये जरूर दोनों देखा जब पैर के साथ। इसलिए उस समय उनका रूप कितना सुंदर होगा, और जिस समय वो राधा जी का श्रृंगार कर रहे होंगे अकेले में, पुष्प चयन करके श्रीमद् भागवत में लिखा, उस समय उनका कैसा रूप निखर रहा होगा। इसलिए यह रूप, इसी के लिए सनातन गोस्वामी कह रहे हैं चकास गोपी परिशब्द, चकाश माने क्या, अत्यंत सुंदर रूप को प्रकाश किया, कैसा मनमत मनमत त्रैलोक सौभगम, यह त्रिलोकी के लिए यही परम सौभाग्य की बात है, ये ऐसा रूप उन्होंने दिखलाया जो गोलोक वृंदावन में नित्य प्रकाश उसको दिखलाया। बोलिए थोड़ा सा हिंट दे दीजिए,
इन एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट वर्स ऑफ दामोदर अष्टकम Sanatana Goswami first explained Sachidananda Tattva, then he explained the beauty of Krishna, his beauty of his form, and now he is explaining the speciality of Krishna's associate, Krishna's Palikar. Here important thing to note is, if Krishna is being adored in the assembly of four Kumar, if four Kumar is sitting and he is seeing Krishna, though he is seeing Krishna, but his approach will be to the extent he will think Krishna is par Brahm, not more than Param Brahm.
Brahma और ब्रह्मा में क्या अंतर है?
ना वो जो परम ब्रह्म,
ब्रह्म नहीं, परम ब्रह्मा। और ब्रह्मा और ब्रह्मा में अंतर क्या है? जानते हैं? ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी इसको किसको कहते हैं?
एक तो ब्रह्मा जी हो
और
जो है पार ब्रह्म जो कृष्ण
जो पार ब्रह्म ने परम ब्रह्मा
चलिए
पर ब्रह्म And when Krishna is sitting, when Hanuman ji is seeing Krishna, or in the assembly, when Hanuman ji is there and seeing Krishna, he will see, oh, in fact he is Ram who has come in the form of Krishna. It will be his approach. Similarly, Krishna, when he is in assembly of cowherd boys, they will see him as their friend. Yashoda Ma will see him as a very small boy, like her son. Different associates will see Krishna differently. Important point to note is there, when Krishna is being seen by gopis, then his beauty is maximum. So Krishna's beauty is according to the associates who are seeing him and adoring him. With Sri Sanatana Goswami therefore referring to a verse from Srimad Bhagavatam and explaining it, he is saying that when Krishna played on his flute and called all the gopis, and then he said, gopis, okay, you go back to your house. And gopis replied, and that you are giving such a wonderful instruction to us, you are Jagat Guru, so let us first serve our Guru. And Krishna could not refute this logic, and then last took place. At that time, Krishna is dancing with all the gopis, Maharaj is saying. All gopis means that Chandravali group and other gopis group, Radha Rani, everyone is there. These gopis, they are seeing that Krishna is with them. Every gopi is noticing that Krishna is with herself. And she is having this proud or vanity that, oh, look, today Krishna is with me. He has left Radha Rani and Chandravali and he is dancing with me. So, therefore they acquired a sort of proud in them. When Radha Rani saw that Krishna is treating her equal to other gopis, she got man. And when she got man, she left that place. And Krishna went after to please her. Maharaj is giving one explanation that when Krishna disappeared and all gopis were trying to find Krishna, they were asking to eat every tree, to deer and even to the plants of Tulsi. They were so much absorbed in feelings of Krishna that gradually they started performing first time of Krishna. One gopi took piece of bamboo and started playing as if she is playing on a flute like Krishna. Another gopi, she became child Krishna, and she caught another gopi making her putana and catching her dress and then playing the pastime of Krishna when Krishna killed putana. These gopis acquired the mood of Krishna, but they did not become Krishna. Important point is this. Because they were so much absorbed in Krishna that they started acquiring feelings and mood of Krishna. The other gopis like Putana, Maharaj is asking a question. A gopi who would have become Putana, whose mood she might have acquired? Because Putana does not have Krishna's mood. Putana has Edward's mood. So Maharaj is saying it is Yog Maya who created such type of gopis, because gopis in reality cannot acquire Edward's mood. So all these gopis, they were totally absorbed in Krishna. Then they started weeping. They sang gopi geet and Krishna presented himself before them. At that time, Krishna, with some sweet smile and little bit ashamed, as if putting his head down, having his cloth around his neck, and
sometimes आँखों के कांखी से इधर उधर देख नहीं रहा है कि उनके भाव क्या हैं,
and he is seeing from his eye, and he is seeing from his eyes, sometimes right, sometimes left, looking at all corner of his eyes to notice the feelings of gopis. At that time, the beauty of Krishna is unparalleled. This beauty is because of in the assembly of these gopis, not otherwise. Now, Maharaj is explaining the scene there. Some gopis, at that time, they came near to Krishna. One gopi took feet of Krishna on her left and started massaging it. Another gopi took hands of Krishna, right hand of Krishna, and started massaging it. One gopi took chewed beetles from Krishna's mouth and then they started eating. These were the gopis. There are many groups of gopis. They are called gana. There are many gana. In each gana, there are thousands of gopis. So, different gopis belonging to different gana, they were behaving differently. Those who are Radha Rani in the group of Radha Rani and Lalita, Maharaj is explaining there is one gopi, they are standing away from Krishna and with some anger staring at Krishna, and Krishna is also seeing at her and realizing his mistake. At that time the beauty of Krishna is matchless. Such type of beauty of Krishna can be seen only in Vrindavan or at Chandra Sarovar near where, or at Radha Ghat Kund where Krishna is performing such a wonderful Ras dance. Now, when Krishna took Radha Rani to please her at Shringarvan, he is beautifying Radha Rani. He is taking many flowers and decorating Radha Rani's hair. What will be beauty of Krishna? So the whole thing is shown here that beauty of Krishna takes place according to the associates he is having with him. When he is with Radha Rani and trying to please her and beautify her, decorate her, his beauty is matchless.
अब वो तत्व रूप अब लीला माधुरी का वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण की लीला माधुरी कैसी। यहाँ पर वात्सल्य रस के अनुसार में वात्सल्य रस भावे तेते विभावित हुए वात्सल्य लीला माधुरी के लिए वर्णन। लीला माधुरी गोकुले भ्राजमानम जसोदा प्रिय जसोदार भय के प्रीत हुए गोकुले ते सुशोभित उच्छन माने भ्राजमानम माने एउटा होता पर जैसे तिनी पलाच्छन आज जसोदा देवी तांके तरस कृष्ण केनो भय ते भीत हुए पलाच्छन आज जसोदा माता के तदपेक्षा अधिक बेगेते दौड़े जी तांके तरस कृष्ण के अपेक्षा भी दौड़ करके क्यों कृष्ण को भय क्यों। कृष्ण को कभी भी भय नहीं होता, जिनका नाम लेने से मृत्यु भी भय खाती है। और उस परब्रह्म सर्वशक्तिमान सर्वनियंता उस कृष्ण को भय कैसे आ गया। ये क्या अभिनय कर रहे, अभिनय भी नहीं कर रहे। हाँ जब भी वो मधुर लीला का प्रकाश कर रहे हो तो उनका ऐश्वर्य योग माया के प्रभाव से दूर हो जाता है। और सचमुच में वे यशोदा जी से भय खाते हैं, गोपियों से भयभीत हो जाते हैं। यहां पर यही दिखलाया सवेरे में दूध, हमने कल बतलाया था कहीं सवेरे में दधि में यशोदा जी कर रही दामोदर मंदिर में बतलाया था थोड़ा, नहीं तो इसको विस्तृत करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यशोदा जी दधि मंथन कर रही क्योंकि वो सोच रही हैं कि ये गोपियां आकर के गोपीगण ऐसे आरुलाहना दिशे अतः निश्चित हमारे घर जो माखन इटा मिष्टि होच्छे ए जने निजे के आज के दूध दोहन कर आज स्वयं दूध दो और आज स्वयं ही जमाया और आज स्वयं ही दधि मंथन कर रही अपने लड़के की बाल्य लीलाओं का स्मरण कर और तन्मय होकर के गान भी कर रही है बड़े सुरीले स्वर से और दधि में मंथन कर रही। उस समय में उनके हाथों का हाथों की सोने की चूड़ियां या कंगन करताल का काम कर रही और दधि मंथन से जो शब्द उठ रहा है वो मृदंग का पिछला भाग ठीक तान ठीक जो संसार में मग्न है और भगवान का भजन नहीं करते उनको गा रहे गीत गा रहे एकदम मग्न हो गई हैं। यशोदा जी परम सुंदरी हैं जिसके कृष्ण ऐसे सुंदर लड़के हैं वो गान करते 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 वो कर रही हैं गोविंद दामोदर
कलेशं कंठयन्
भी गोपियां काम करती हैं, विशेष करके यशोदा जी, तो कृष्ण के भाव में तन्मय हो जाते हैं। झाड़ू दे हैं तो गोविंद दामोदर माधवे, जबकि ओखल में कूटती हैं कोई चीज तो भी गोविंद दामोदर माधवे, रसोई पकाती हैं तो गोविंद दामोदर माधवे। सब कामों में यशोदा जी दधि मंथन करते हुए अपने बेटे के बालकेली को स्मरण करती हुई और गोविंद दामोदर माधवे की इत्यादि अपने द्वारा रचित छंदोबद्ध संगीत को गा, इस प्रकार से तन्मय हो गई। कृष्ण पलंग पर लेटे हुए उनको भूख लगी, मैया को देखा नहीं है, किसी प्रकार से पलंग से उतर के नीचे आए, देखा कि मैया बहुत दूर में गति मंथन कर रही, किसी प्रकार से उतर करके करते हुए मैया की तरफ न चले और जोर से रोने लगे, और जोर तिन क्रंदन करते लगे, किंतु यशोदा मैया तैमन तन में जा सुने ना, जत जत निकटे जाचन तत जत जोरे, प्रथमे करछे चोखे जल नाय, किंतु परते सती सती देखले जे मैया मा के उपेक्षा करछे, तखने उपरे जल आते लागलो आर एमनी भावते करछे उल्टे हाँ, एखाने काजल मिश्रित जल आर एखान थेके पड़छे, একবারে নিকটে যে যখন উপস্থিত হলেন, যখন নিকটে একদম উপস্থিত হুয়ে আর জোর সে চিল্লা রে মাইয়া মাইয়া, আর মাইয়া নে ধ্যান নেই দিয়া তো দধি মন্থন কাল জো দণ্ড কো পকড় দিয়া বাঁয়ে হাত সে আর দাইনে হাত সে যশোদা জি কা কপড়া পকড় দিয়া, আরে কোন পকড় লিয়া, एक पकड़ धरे धरे रख लो, देखे जैसे अरे तमार लाला कन्हैया, बस गोदी को प्यार से बड़ी गोदी से गोदी में रख लिया, कपड़े से ढक कर। उस समय यशोदा जी के स्तन में कितना दूध है वो इसी से समझो, ये खीर सागर जो है उनके आंशिक दूध से भरा पड़ा है, ये सब उन्हीं के स्तन से आया, कितना दूध होगा, अपुरंत दूध, कभी कमी नहीं हो सकती दूध। और इधर कृष्ण का पेट इतना लंबोदर है कि उसमें एक रोए में अखिल विश्व आ सकता है, तो पेट कितना बड़ा जिसमें ऐसे अनंत कोटि विश्व उसके अंदर भी समा सकता है, इसलिए वो दूध और भूख भी बड़ी लगी है, इसलिए बड़े ललक के साथ में वो दूध पीने लगे। पास ही में चूल्ही पर रखा हुआ दूध फनने लगा, यशोदा मैया को फुर्सत नहीं, वो तो उनको दूध पिलाएंगी, दूध खत्म नहीं होगा, कृष्ण की भूख भी कभी समाप्त नहीं होगी, वो भी पीते रह जाएंगे, हम मैं उनकी सेवा नहीं कर सकता। जब कृष्ण की सेवा में ही नहीं लग सका, जीवन धारण करने की क्या आवश्यकता है, भक्त ऐसा सोचता है, यदि हमें कृष्ण सेवा के लागलाम ना, हमारे द्रव्य लागलो ना, हमारे शरीर लागलो ना, तो ये माटी एक भार बहन करे कीला, प्राण धारण करवार को आवश्यक यदि इन कथाओं का कोई प्रभाव पड़े जीवन में, यदि कृष्ण की सेवा नहीं हुई, गुरु की सेवा नहीं हुई, वैष्णव की सेवा नहीं हुई, धाम की सेवा नहीं हुई, और ऐसे सुंदर विचार हमारे हृदय में नहीं आए, मर जाना ही अच्छा है, मर जाना बहुत अच्छा है। दूसरे जन्म में यदि कुछ होगा सुकृति तो उठा पड़ेगा, किंतु हम लोगों की ऐसी दुर्बलताएं हैं कि इन कथाओं को सुनकर कभी हमें यह प्रेरणा नहीं मिलती। हम यहाँ सुनते हैं और थोड़ी देर के बाद ही यहाँ से जाएंगे, भोग विलास की बातें याद आएंगी, काम की बातें याद आएंगी। जब तक हैं साधु संघ में तब तक वो दिखता नहीं हो सकता है कि यहाँ रवि सुनते हैं और कहीं उसका चित्त और हो, इसलिए इन सबको लेकर के प्रेरणा दूध जैसा और वो चुल्ली में गिर रहा है आग में जल मरने के लिए। यशोदा जी ने सोचा नहीं नहीं नहीं, मैं अपना स्तन पीछे पिलाऊंगी, पहले इसको सांत्वना दे करके इसको सेवा में लगाऊं, बेटा घबराओ मत, अभी जल्दी से तुमको जमा करके दही बना करके फिर मक्खन लगा करके फिर तुमको खिलाऊंगी। गुरु ऐसे ही भक्तों को, यदि ऐसा गुरु है जैसे कैसा स्वरूप जी ने देखा गोपी को, गोपी कुमार को, गोप कुमार सांत्वना देने के लिए आए ना। जब तक हम बृहद भगवतामृत को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, इन चीजों को समझना बड़ा भारी कठिन, तो इसलिए यदि भजन नहीं हुआ तो ये प्राण किस लिए जरूरत है, कोई जरूरत नहीं शरीर को धारण। इसलिए शरीर हमारे जितनी हमारी एनर्जी है, जितनी हमारी शक्ति है, उन सारी शक्तियों को, इच्छाओं को, प्रवृत्तियों को कृष्ण सेवा में नियुक्त करें। ये होगा कैसे, ऐसे यदि गुरु हों उनके चरणों में समस्त वृत्ति, ऐसे शिक्षा गुरु यदि हों तो उनके चरणों में ऐसी वृत्ति देने से तब वो ऐसा कर सकते। दूध गिर रहा है, यशोदा मैया गई और प्यार के छींटे उस पर दे दिए, देने के साथ ही साथ में नीचे उतर गया और नीचे उतरने के साथ ही से जब रख दिया इधर, और तब भी जब आई तो देखा कि कृष्ण तो है नहीं, दधी भांग फूटा है और कृष्ण ना जाने कहां यहां से घर में घुसा हुआ है, और वहीं से मक्खन लेकर कभी कभी मुख में डालता है और कभी बंदरों को दे रहा है, कभी कौओं को खिला रहा है। बंदर उनके हाथों से झपट करके कूदते हैं और उनके हाथों से लेने की चेष्टा करते हैं, कौए भी एकदम जो बच जाता है बंदरों से इधर उधर छिटका हुआ उसको कौए ग्रहण कर रहे हैं। यशोदा मैया जी ने देखा, कुछ हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, सचमुच में बड़ा उत्कंठ हो गया है। निश्चित रूप में मैं तो जानती नहीं, आज मैंने देखा ये गोपियां जो उलाहना देती हैं ये झूठ मूठ का नहीं, बड़ा चंचल हो गया है तो इसको दंड देना जरूरत है ना, जो पीछे न जाने क्या करेगा, पर ऐसे से की कर गए भविष्य तार चिंता हो लो करे लालन लालन पालन की फर्शन माता मोरे पुत्र भावे परे न बंधन और माता मा के पुत्र भावे के लालन पालन करे और कखनो की करे अति हीन ज्ञान करे, हीन माने क्या, एक कोनो छोटो कोनो ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, बल नहीं, की करते की करे क्या करने से आया बुद्धि, इसलिए उसको ताड़न और भर्षण। ताड़न माने क्या, कभी कभी हल्का सा चपत दे देती है और कौन कौन बंदर बंधु चंचल मिथ्यावादी भूत किसे जन्न चोर किसे जन्न बोलवे लाल लेपाल, कखनो ब्रह्म ज्ञान होवे ना,
কি কোন একটা দেবতা এখানে এসেছে আমার পুত্র রূপে? এটা জ্ঞান কোন মহাত্মা আমার পুত্র রূপে তো জন্মে, এই দুই ভাব আসবে না, সাধারণ পুত্র ভাবে তাহার এই জন্য যশোদা মায়ের ভয়ে বিন্দু তিনি দেখছে যে সে এদিকে দেখছে, এদিকে আবার এদিকে দেখছে বানর গুলিকে, এদিকে কাক গুলিকে ফেলাচ্ছে আর নিজেও কখনো কখনো খাচ্ছে। যশোদা মা দেখে হাতে একটা পেঁট উঠিয়ে দিলেন, আর পেঁট উঠা করকে বিল্লি কি ভাঁতি চলতি হুই বিড়ালের ভাঁতি একেবারে শুকনো পাতাতে উচারে তাহলে ফটফট করবে, দেখছে আর খাবাচ্ছে খাচ্ছে ইতিমেহ যশোদা মা একেবারে বেগেতে দৌড়ে দিয়ে তার পিছনে এই কেবল দু আঙ্গুল থেকে গেল। ওই সময় কৃষ্ণ কি করলো লম্ফ দিয়ে পালালো। যশোদা মা দেখলেন আচ্ছা তুমি মহাপুত্র, তুমি মনে করছো যে আমি রাজমার্গে কে গেলে বৃদ্ধ গোপরা থাকবে, তুমি লজ্জাতে মা যাবে না, আজকে সব তো গোষ্ঠীতে এদিকে ওদিকে, এখন ব্রজেতে কোন গোপ নাই শুদ্ধ, এই জন্য তুমি কি করলেন এত কাপড় টাপড় বেশ খসে টসে দিয়ে একটা প্রেমের বিষয় আর একটা প্রেমের আশ্রয়। কৃষ্ণ সমস্ত প্রকারের প্রেমের বিষয় কোন 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 সময় আশ্রয় হয়ে যায়, তখন তার বিষয় কি হয় গোপীগণ প্রেমের বিষয়, আর কৃষ্ণ আসে কিন্তু বিশেষ বিশেষ প্রায় সমস্ত রসে বিষয় হচ্ছেন কৃষ্ণ, আর আশ্রয় হচ্ছে সেবকগণ। এখানে তো যশোদা মাইয়া হচ্ছেন আশ্রয় প্রেমের, আর বিষয় হচ্ছেন কৃষ্ণ, তার মধ্যে আবার আশ্রয় হলেই চলবে না, উদ্দীপন ভাব চাই। উদ্দীপন ভাব মানে কি? একটা তো স্থায়ী ভাব, তিনি নিত্য যশোদা মাইয়া মাইয়া মা, কোনদিন অন্য কিছু হতে পারবে না, বস মা মা স্থায়ী ভাব, এটা হচ্ছে বাৎসল্য ভাব। কৃষ্ণকে মনে করছেন আমার পুত্র, আর আলম্বন এই দু প্রকারে আগে বললাম, আর উদ্দীপন মানে কি? ওই কৃষ্ণ বাল্য লীলাতে ওনার কোলেতে যখন বসেছেন যশোদা মা স্তন পান করাতে তখন বলি অনুভাব ব্যভিচারী ভাব সকলি প্রকট হচ্ছে, চোখ থেকে জল, স্তম্ভ, শ্বেত, এই অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব। ব্যভিচারী ভাব কি? হাতে নিয়ে তিনি এরকম করছেন, চোখ তাকে করছেন, হৃদয় গদগদ হয়ে গেছে। এই সব মিলিয়ে রস হয় ভক্তি রস, তখন চোখ থেকে জল পড়তে লাগে, এই হচ্ছে বাৎসল্য রস। কেবল মা হলেও চলবে না, এই সবগুলি ভাব স্থায়ী ভাবের উপরে যখন মিলিত হবে আর কি কি অনুপাতেতে তখন এই সব রূপ গোস্বামী এই সবগুলি ভাব বর্ণন করেছেন, কিন্তু কিরকম মিলাইতে হবে, কত কত প্রপোর্শনেতে কত কত লাগবে তাহলে রস হয়, এইটি রঘুনাথ দাস গোস্বামী বর্ণন করেছেন বিশেষ। কত জপ, কত চিনি, কত নেবু, কত এলাচি কর্পূর পরিমাণ চাইছি, এক ছাটা চিনি আর 10 কিলো জল আর 15 কিলো নেবু, তাহলে এটা রস হবে না,
এইরকম ভাবে এই পরিপাটি গুলি রূপ গোস্বামী সকলের গুরু আর তাহার অনুগত জন যারা আছেন, জীব গোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, কৃষ্ণ দাস, কবিরাজ গোস্বামী ইত্যাদি, পরবর্তীকালে আমাদের বিশ্বনাথ ঠাকুর, এই সব গুলিকে কিভাবে ভক্তি ভক্তি রস রূপে পড়ে। চৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্বেতে ভক্তি ছিল কিন্তু ভক্তি রস ছিল, চৈতন্য মহাপ্রভু তার সেবকগণের মধ্যে এইগুলি প্রেরণা করে সরস দামোদর রায়রামানন্দ আর এই রূপ গোস্বামী রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দ্বারা ভক্তি রসকে জগতে যেতে। এই সবগুলি ভাব থাকলে এসে ভাব নেই মনে সে কই ভক্তি রস মে প্রবেশই নেই কর সকতা, ইতনি সুন্দর ব্যাখ্যা নেই হো সকতা। বলি
got down from his cot It was very difficult for him to get down from the cot. He is still crying louder so that his mother may hear, but my mother won't hear because she is tanmay, totally absorbed. First, when Krishna was weeping, crying, there was no tear in his eyes. The purpose of crying was just to distract the attention of mother, but he failed. Now, when he found his mother is not listening him, he really became very much concerned for it, and he started weeping loudly and tears came out from his eyes. Now he is rubbing his eyes from the back of his hand. And that kajal he was having in his eyes, that's also coming from with a stream of his tears. Maharaj is explaining, Krishna went near to his mother, but his mother is still not listening. And then Krishna caught hold of that churning rod by his left hand, and by his right hand caught hold of mother's cloth. Mother suddenly realized something happened. Who is it? And she said, oh, Krishna, he has come here. She became overwhelmed by love. She caught Krishna, took him in her lap, and started giving milk to him. She gave her breast to Krishna. Krishna started drinking milk. He was very hungry. How much milk is there in breast of Krishna? Breast of Yashodama? Maharaj is explaining that whole Kheer Sagar, ocean of milk, is a drop of Mother Yashoda's milk. Only a drop, a few drops. And Krishna is drinking that milk. That milk of Mother is unlimited. And Krishna's capacity to drink that milk is also unlimited. How much? See the vast stomach of Krishna, that in his small roi, what we call, pore of his head, body, in single pore, there are millions of universes. So we can understand that what is the capacity of Krishna to drink milk. Meanwhile, there was a milk which was on the stove. That milk, sir, I won't be useful for Krishna. I had desired to serve Krishna. I thought that Krishna will drink me. But now I am finding that Krishna is drinking milk of his mother, which will never end. And he will keep on drinking, because mother's milk is unlimited and Krishna's hunger is also unlimited. So what is the use of my life? It is better I should kill myself, putting myself in the fire. Maharaj is explaining, this must be the feeling of sadhak who are practicing devotional service. If this body does not come in use of Krishna and Vaishnava, then what is the use to keep this body? We should have this feeling that we are especially hearing such classes. Such type of feeling should come up in us, and we should do something very positively in this regard. But what happens? Because of our own weaknesses, Maharaj is explaining, we hear the class, the moment we leave the class, we start thinking about self-gratification. Then even while listening, our mind distracts here and there in self-gratification. It should not be like this. So, Yashoda Ma is saying, oh milk, don't be worried, I will use you in service of Krishna. This is duty of Guru. Here Yashoda Ma is working as a Guru. This is a characteristic of Guru, a real Guru. He will always You is disciple in service of Krishna. Milk is wanting that he should serve himself. And when he will not be able to serve, what is the job like when he is giving up his life? This should be desire of a practitioner. Maharaj is saying here one sentence. We should apply our whole energy, our thoughts, our propensities, our tendencies and moods and desires